Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज दिन है मंगलवार और हम आधे घंटे के शो में शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे. आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. नमस्कार सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
आप दोनों के साथ साथ सभी लिसनर्स को भी नमस्कार.
पहले हेडलाइंस के साथ वैभव.
Benchmark domestic equity indices end two-day winning streak. Sensex slips 156 points. Nifty closes below 24,400. India to become world's fourth largest economy in 2025, says IMF. And global crude oil prices rebound. Brent crude trades at $61.50 per barrel.
देश के शेयर बाजारों के सूचकांकों में दो कारोबारी दिनों की बढ़त के बाद मामूली गिरावट. सेंसेक्स 156 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,400 के नीचे बंद. 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर होगी, कहा आईएमएफ ने. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, ब्रेंट क्रूड $61.50 प्रति बैरल पर. आइए सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालते हैं. देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बिकवाली का दबाव देखा गया. इससे पहले दो कारोबारी दिनों में बाजार में तेजी कायम थी. ऑटो और कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजी शेयर्स को छोड़ दें तो ज्यादातर क्षेत्रों में बिकवाली बनी रही. सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 156 अंक यानी लगभग 0.2% गिरकर 80,641 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 82 अंक यानी 0.33% गिरकर 24,380 पर बंद हुआ. विस्तृत बाजार के सूचकांकों में ज्यादा नुकसान देखा गया. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2.1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.3% से ज्यादा की गिरावट रही.
The benchmark domestic equity indices today ended with modest losses, snapping their two-day winning streak. Barring auto and select technology stocks, most sectors witnessed selling pressure, with realty and PSU banks dragging the most. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, slipped 156 points, almost 0.2%, to close at 80,641. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 82 points or 0.33% to settle at 24,380. The broader market indices at the BSE closed with deeper cuts. The mid-cap index fell over 2.1% and the small-cap index lost more than 2.3%. In the Sensex pack, 19 out of 30 companies edged down. In the top laggards, external slid over 3%. Tata Motors as well as SBI Bank both slipped more than 2% each, and Adani Ports dropped over 1.9%. Among the top gainers, Bharti Airtel, AMD, Tata Steel both added over 1.6% each. Mahindra & Mahindra rose almost 1.6% and Hindustan Unilever advanced over 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended in negative territory. Among the top laggards, realty fell almost 3.5%, power slid over 2.6%, and services lost over 2.5%. The only two gainers were tech, which added 0.11%, and auto ended nearly flat. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,167 companies declined, 779 advanced, and shares of 126 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 25 companies hit their 52-week high, while 56 companies hit their 52-week low.
जी सिद्धार्थ जी, बाजार की रफ्तार पे देखें, गौर करें तो आज जो मामूली गिरावट दिख रही है, क्योंकि 80,000 के आंकड़े पे ये कोई बहुत 156 अंक कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, एक हफ्ते में भी के हिसाब से देखें तो सेंसेक्स में थोड़ी बढ़त रही है, और एक महीने में तो पिछले करीब 10.25% की बढ़त है सेंसेक्स में. लेकिन पिछले कुछ समय से जो अभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अपनी देख रहे हैं, जो कुछ सामरिक तनाव है, और इसके अलावा जो दूसरे फ्रंट्स पे अमेरिका के साथ और जो सब कुछ चल रहा है, उसे लेकर अभी बाजार की हालत पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
नहीं देखिए सुबोध जी, आपने जो बात कही कि अभी तकरीबन पिछले एक महीने में जो मार्केट्स में जो एक तकरीबन 10% का गेन है, ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम देयर लोज, तो वो स्थिति मुझे लगता है अब जहाँ पे हम हैं और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और जिस तरह की चाहे वो यूक्रेन रशिया हो या अमेरिका यूएस में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक वो अपने आप में एक नया अध्याय है, मतलब टैरिफ का है, उसके अलावा भी उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, किसी ना किसी चीज पे कुछ ना कुछ वो नया बोलते हैं। तो और अभी कल फिर एक बार उन्होंने उन जो अमेरिका से बाहर बनने वाली जो मूवीज हैं उनके ऊपर बात की है और
उन्होंने जी लगाएंगे।
और उसके साथ साथ कुछ फार्मास्यूटिकल्स जो इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर फिर से उन्होंने टैरिफ लगाने का थ्रेट जो है एक बार फिर धमकी दी है। हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ फिर एक और विरोधाभास जो बात है, क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू किया बेसिकली टारगेटेड था चाइना को लेके, तो अब उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया है कि चाइना के साथ थोड़ा नरमी बरतेंगे क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अब कमजोर हो रही है, उनको ये लग रहा है कि अब थोड़ा उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। बट मुझे लगता है अभी भी जो वो कुछ कह रहे हैं अभी भी इन सब बातों में कुछ भी कंक्लूजन निकालना बहुत जल्दबाजी होगा। साथ साथ यूक्रेन रशिया चल रहा है और इसराइल हमास चल ही रहा है, वो भी कहीं हमें ये नहीं दिख रहा है कि कोई
होता
भी
नहीं दिख
रहा है। किसी भी जो फ्रंट पे कोई भी अब एक नया फ्रंट जो अब खुल रहा है वो हमारे आपके बीच में हम लोग इम्पैक्टेड हैं, इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जो पहलगांव के बाद जब जो स्थिति बनी है, तो मुझे लगता है इसमें और ये सब स्थिति अगर इसको और थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब FIIs ने पैसा निकालना शुरू किया और ट्रंप साहब की अमेरिका में जीत हुई तब हमारी मार्केट बहुत तेजी से गिरी, उसके बाद से ये जो रिकवरी आई जिसका आपने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है अब हम ऐसे फेज में हैं कि जब कि मुझे लगता है ब्रॉडली हम इसी रेंज में रहेंगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा अपहीवल ऊपर नीचे मुझे नहीं लगता अनटिल अनलेस कि हमारे जो आज अगर इंडिया पाकिस्तान को लेके या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती जिसका मार्केट पे कुछ नेगेटिव असर बढ़े, हालांकि और अदरवाइज मुझे लगता है हाँ फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मिक्स्ड हैं, कहीं कुछ कंपनीज के बहुत अच्छे हैं कहीं बहुत अपेक्षाकृत नहीं हैं। तो मुझे लगता है ब्रॉडली मार्केट्स इसी रेंज में रहेंगी क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो हम अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन हो या हमारी मॉनिटरी ईजिंग हो तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता का विषय है। बट हाँ ये ज़रूर है जो बाकी इवेंट्स हैं दे आर इम्पैक्टिंग द मार्केट्स।
Mr. Singh, we've talked about the top laggards today in the sectoral indices at BSE. Realty has fell almost 3.5%, power has slipped 2.6%, services has lost over 2.5%. From an investor point of view, do you believe that the investors are losing their interest in all the other sectors and it's just IT and a few more sectors that are now favorable for the investors? Or even that is going out of their hands and because of the unpredictability, they're not really able to capture the mood of the market and take any gains out of it?
No, I think Vaibhav, the slip that you're seeing, I think there must be also the reason would be profit booking by a lot of investors.
All right.
And the sectors that you mentioned, realty, power, services, I think if we get these kind of negative news, because there is also a cost that we would be paying in this current financial year, our own growth could be hit by almost 0.5% due to this ongoing tariff issue. So all that also is kind of being factored in by the markets, and obviously that is why you are seeing these kind of reflection in the market in these sectors. But what I would say, certain days, certain sectors are taking a hit. But all this is also because markets, that is also the nature of the market. You know, someday some people sell in certain sectors, some sectors people buy, and there is obviously some good news in certain sectors. So there's, you would always see a mixed bag. So to ascribe that yes, today reality has fallen, so there's something big has changed in reality, I don't think. Yes, the overall obviously because there is a feeling that we, our own GDP may be impacted, so all that could be a reason for a little bit of reflection in those sectors. But overall I don't see that as a matter which is something, a phenomena or a concern.
So we're in a safe place and there will not be too much of upheaval, as you were saying earlier. Also, since the tariff war, the so-called tariff war, has begun from the US's side, which has impacted so many sectors across the globe, not just India, And India being in the center of the investment hub market, it has taken a hit as well, and especially the retail investors. Do you believe that reports of zero for zero tariff and other such policies by the government as they wish to stabilize this situation will help the investors' trust in the coming times?
See, Vaibhav, from an investor point of view, I'll be very clear. Like you mentioned, zero for zero. I think these are all things which would still take some time to settle, because any trade negotiation doesn't happen overnight.
Absolutely.
These are very long haul. And one thing which the US side is also indicating is that we are nearing some solution, or some interim solution, not a long-term solution. So that whatever trade negotiation or arrangement we kind of make now would be very, not something which would be very extensive in nature. So would be something which is very short in nature for a brief period. And from an investor point of view, I would say, see, Indian economy, there is nothing to worry as far as our own economy, our own fundamentals are concerned.
Absolutely.
So from an investor point of view, what worries me most is when markets fall, investors panic. If you ask me honestly, I would say Mr. Trump or these trade issues which sprang up after his taking over as US president, the issue of tariff. So these have given an opportunity to the investor to come in again in the market. FIIs left in a big way, but it was our own domestic investors who were there in a big way, and who almost now, people below the age of 30 constitute almost 40% of our own Indian markets.
Absolutely.
So what I'm trying to say is that if for an investor, he need not get panicked, because if you're coming to market, please have this in mind, that don't come with an aim to make money overnight. So you, and in the current scenario, I think you have to wait for your day. Some opportunity, I would say, is still we have lost. Even retail investors have lost the best time, I would say, for now. If something major happens between the two nations, India and Pakistan, then probably markets, we may see a huge impact on our markets. But that is something which only future can tell. But for the time being, I would say investors need to be invested. They should wait for their day. There is still a lot of value buying in the Indian markets. And on a given day, you should identify your stocks and wait for that opportunity, wait for that day and pick those.
So Rome was not built in a day, and patience is one of the virtues that will let us get those opportunities.
जी, बाजार के लिए तो वही है मंत्र.
Absolutely.
और सिद्धार्थ जी, एक जो खास बात है, एक सेक्टर जो जिस पर अभी गौर करने की शायद जरूरत है, वो बैंकिंग. उसके जो आंकड़े अभी पिछले हफ्ते हमने देखे हैं, जो आंकड़े आए हैं अभी आमदनी के, उनके वो कुछ अभी सोचनीय है सार्वजनिक बैंकों के खास करके.
हाँ, तो वो वही मैंने कहा, आपने सार्वजनिक कह दिया, नहीं तो मैं कहता कि मिक्स बैग है.
जी.
कहीं मतलब जी. कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं उतने अच्छे नहीं है. बट उसमें भी अगर आप देखेंगे, जैसे मतलब जो एक बड़ा सरकारी बैंक है जिसके नतीजे पिछले हफ्ते आए, उसमें भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके किसी बिजनेस की वजह से उनके प्रॉफिट्स घटे हैं. उन्होंने कुछ जो अपने कुछ लॉन्ग टर्म जो उनके वो हैं, उनके लिए जो प्रोविजनिंग की है, जो उनके एक्सपेंसेस उनको लगता है भविष्य में उनके ऊपर आएंगे, तो उनके लिए उन्होंने प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं. सपोज मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूंगा, उन्होंने पेंशन को लेकर एक बड़ी प्रोविजनिंग की है उस बड़े बैंक ने. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नतीजे बहुत चिंताजनक है. हाँ, बिल्कुल, नतीजों पर असर इसलिए भी आएगा जब आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो वो लेंडिंग करते हैं उस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, एक प्रेशर आएगा. लेकिन मुझे उसको बहुत, मैं उसको चिंता का विषय नहीं मानता हूं. और जहां तक एनपीए की स्थिति है, सरकारी बैंक हों चाहे हमारे निजी बैंक हैं, बहुत मतलब वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो मुझे वो चिंता का विषय नहीं लगता. और दूसरा, जहां तक बैंकों का बात है, तो बैंक हमेशा फ्रंटलाइन स्टॉक्स होते हैं. चाहे वो जब वो चढ़ेंगे तो सबसे आगे रहेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो भी फ्रंटलाइन रहेंगे बैंकिंग स्टॉक, और जब मार्केट पे कोई बुरा असर आता है या गिरते हैं तो तब भी आप देखेंगे उतनी तेजी से नीचे आते हैं.
हाँ, वैसे अभी अगर देखें तो उनकी स्थिति जो रही है, जिस तरह की गिरावट है, या पिछले एक महीने का आंकड़ा देखें तो जो बढ़त है, वो सेंसेक्स में वैसा ही दिखता है.
बिल्कुल ठीक कहा आपने. और मुझे लगता है कि आप अभी भी निवेश के बहुत मौके हैं एक इन्वेस्टर के पास, और मार्केट में अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बढ़िया अपनी रिसर्च करके आएं. अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो आप SIP मॉडल से आ जाएं और कंपनी के मैनेजमेंट को देखें, बिजनेस मॉडल को देखें, उनकी ऑर्डर बुक क्या है, उनका प्रॉफिट जो उनका वो है, ग्रोथ का वो है, वो सब उसको डिटेल में स्टडी करें। और मुझे लगता है मार्केट में आ रहे हैं, फिलहाल जब आ रहे हैं तो ये मान के चलें कि कम से कम मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल के उसको माइंड में रख के आएं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पैसे को अगले 1-1.5 साल के लिहाज से कम से कम।
जी आइए अब जरा रुपए की हालत पर नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 17 पैसे कमजोर होकर 84.43 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 99.56 पर चल रहा था और एशिया के बाजार और यूरोप के बाजारों का क्या हाल रहा वो देखते हैं। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख बना रहा और निवेशकों की नज़र अमेरिका और एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों पर टिकी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.1%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स लगभग 0.2% बढ़कर बंद हुआ। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार आज सार्वजनिक अवकाश की वजह से बंद रहे। ताजा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में हल्की गिरावट देखी जा रही थी। जर्मनी के डैक्स में 0.8% से ज्यादा, फ्रांस के कैक 40 में भी थोड़ी गिरावट देखी गई और लंदन के फुटसी 100 में 0.12% की मामूली गिरावट बनी हुई थी। तो अभी अगर हम आज यूरोप वाले पर अगर गौर करें, क्योंकि एशिया के तो अगर हम देखें निकेई तो आज बंद ही था और कोस्पी भी बंद था, दो बड़े बाजार नहीं थे, और लेकिन शंघाई कंपोजिट ने बेहतर आज सबसे अच्छा दिखाया, 1.1% थोड़ा मायने रखता है, लेकिन आज यूरोप में थोड़ी
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फुटसी और जहां तक आपने यूरोप की बात की, एक
अभी, कहीं अभी शुरुआती,
हाँ शुरुआती भी, और वहां भी कहीं ना कहीं एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आना है, दूसरा उनको भी जो फेड का जो वेनेसडे को अनाउंसमेंट है फेड की पॉलिसी का, वो एक प्रेशर है। दूसरा कहीं ना कहीं टैरिफ को लेके जो यूएस और यूके के बीच में भी जो एक टैरिफ अरेंजमेंट होना है या टैरिफ की जो बातचीत चल रही है, जो निगोशिएशन चल रही है, उनका भी प्रेशर कहीं ना कहीं बाजार पे है, उसको भी लेके चिंता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पीछे ये लग रहा था कि शायद यूके विल बी द फर्स्ट नेशन विच विल हैव एन अरेंजमेंट विद यूएस ऑन टैरिफ्स, बट अभी कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा एक अनिश्चितता का जो है बादल छाए हुए हैं, तो शायद उसका असर मुझे लगता है इमीजिएटली दिख रहा है।
We're talking about the U.S. stocks. U.S. stocks declined on Monday as investors assessed U.S. President Donald Trump's latest tariff announcement ahead of the Federal Reserve's monetary policy decision later this week. The Nasdaq Composite lost over 0.7%. S&P 500 fell more than 0.6%, ending its longest streak of gains in 20 years. And Dow Jones Industrial Average slipped 0.24%, snapping a 9-session win streak, its longest since December 2023. Mr. Singh, the investors in U.S. as well as those who are invested in the U.S., again, do they have anything to worry about that the tariff announcements before, as you said, the next week's Fed announcements of the monetary policy?
See, I think it's the uncertainty is being created by their own president. Absolutely. And I think even they would be worried because he's again talked about 100% tariff on movies which are produced outside of US. Plus, he's also again talking of threatening to impose high tariffs on imports, on pharma imports coming, emanating out of outside of US. So I think all those things, and the most important is the commentary from the Fed, Jeremy Powell, I think, because in his last commentary, he had indicated that he's waiting for more data, concrete data, because there's a fear of a slowdown in US also. So I think the employment data and the Fed's decision, I think most, though it is accepted, it is expected that they would not cut rates in this policy. It is expected usually for in this current year, the expectation is for a 75 basis cuts by Fed, but I think they won't wait for more data in terms of employment, inflation. So I think for now we expect there would be a status quo in terms of rates, but yes, the commentary, the what he talks about the US economy, that is something which will drive the US markets also.
Absolutely. You've been an analyst of the markets and an investor yourself for such a long time. Have you seen this kind of unpredictability before which have come in the markets, and has this kind of spooked the investors before ever, or this is the big wave that we are seeing just now?
No, in near term, if you talk in near future, I think COVID was one event which had impacted or spooked the markets. But man-made situation, I think it is only after the US, Donald Trump took over the presidency of US, and his statements and his stance on tariffs, I think that has created a lot of uneasiness in the investors all around the world and is also impacting the economies in the world.
जी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, वह जो आपका सवाल था कि अगर हम बहुत पुरानी बात कर ले तो खाड़ी युद्ध के दौरान भी देखे या सीधे जहां अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था, अफगानिस्तान में था, उस समय भी ऐसी अनिश्चितता नहीं दिख रही थी कि कब कहां क्या हो जाएगा. वहां पता था कि एक तरफा है, ये ऐसे होगा.
एंड सुबोधि, माय क्वेश्चन इज नॉट जस्ट एज एन एज अ मॉडरेटर, बट यू नो बोथ यू जेंटलमैन हैव बीन देयर, एंड आई आस्क नॉट जस्ट ऑन माय बिहाफ बट आल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ यंग इन्वेस्टर्स, व्हिच एज मिस्टर सिंह सेड कॉन्स्टिट्यूट नाउ 40% ऑफ द मार्केट शेयर. सो इट्स लाइक अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ अस दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
नहीं वैभव, एक बात बड़ी क्लियर है, मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरह की अनिश्चितता रहे, और ये माहौल तो बहुत अनिश्चितता है. मतलब इस माहौल के बारे में ना आप कुछ बता सकते हैं, और अनिश्चितता के जो जो वो हैं वो बढ़ रहे हैं. मतलब अभी तक अब इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान जुड़ गया, इसमें एक चैप्टर और जुड़ गया, तो और ट्रंप साहब क्या करेंगे, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी कोई अभी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है. हमारे अपने उनके साथ नेगोशिएशन किस स्तर तक पहुंचे हैं, क्योंकि रोज इस तरह के तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं. तो मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए बड़ा सिंपल है, आपको अच्छा मौका, अपने अच्छे दिन का इंतजार करिए और मार्केट में इन्वेस्ट करिए, तो थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा दिल मजबूत करके आइए, आपको फायदा होगा. क्योंकि रेट्स अभी जो प्राइस आप जिस प्राइसेस पे इन्वेस्ट करेंगे, दे आर गुड प्राइसेस.
जी, आइए अगली खबर पे चलते हैं. बड़ी खबर है आईएमएफ की ओर से, देश का सकल घरेलू उत्पाद 4,187 अरब डॉलर से अधिक हो जाने के कारण भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, या जापान के 4,186 अरब डॉलर्स के जीडीपी को पार कर जाएगा. आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. यह एकमात्र ऐसा देश है जो अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक वृद्धि दर दर्ज कर सकता है. वैश्विक व्यापार युद्ध के कारण जापान के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है. 2025-26 में इसकी वृद्धि दर 0.6% रह सकती है. तेज वृद्धि दर के साथ भारत का जीडीपी वर्ष 2028 तक 5,584 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की संभावना है, जिससे यह जर्मनी से आगे निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. आईएमएफ ने जर्मनी के लिए 2025 में 0 और 2026 में 0.9% की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है, क्योंकि अभी दुनिया में जारी व्यापार युद्ध का यूरोप के देशों में जर्मनी पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है.
एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, मीनवाइल मूडीज रेटिंग्स टुडे लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ projections for 2025 to 6.3% as compared with 6.5% earlier. It also projected that India's growth expected to accelerate to 6.5% in 2026. It said economies globally will see a slowdown on account of heightened US policy uncertainty and trade restrictions. It said geopolitical stresses like tension between India and Pakistan also have a potential downside risk to its baseline growth forecasts. This outlook aligns with the International Monetary Fund IMF, which also projects India as the only major economy poised to grow above 6% in 2025. On a positive note, Moody's expects India's inflation rate to moderate to 4% in 2025. And 4.3% in 2026, this easing inflation trend is expected to strengthen the country's macroeconomic fundamentals, potentially giving the RBI more room to lower interest rates and support growth.
जी, वैभव, आपने जो मूडी का अनुमान अभी बताया है, जो थोड़ी सी कटौती की है मूडी ने, लेकिन उसके बाद भी जो हम पहले वाली खबर है आईएमएफ की, हम दोनों को जोड़कर बात करें तो आईएमएफ ने जो बताया है वो तस्वीर काफी अच्छी नजर आ रही है कि अगले एक साल, इसी साल, अब 2025 की बात कर रहे हैं कि भाई हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और 2028 तक तो शायद हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यूरोप में और जर्मनी को खास करके देखें तो उसके वृद्धि दर में अब गिरावट या लगभग वो रुक जाने की आशंका पैदा हो गई है। सिद्धार्थ जी आपका?
नहीं सुबोध जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तकरीबन अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था, वी आर अराउंड 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल बी अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी समवेयर इन 2028-29, सो वी वुड बी बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट हो रहा है, और देर विल बी अ लिटिल बिट इम्पैक्ट, और इट माइट बी 1 or 2 months हेयर एंड देयर वुड बी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डिसरप्शंस व्हिच इज कमिंग इन।
India has the highest self-reported artificial intelligence skill penetration in the world, which reflects the country's growing potential in the sector. According to a United Nations Development Programme UNDP report released today, the country has made significant progress in harnessing AI to empower farmers and small businesses. With a talent pool of over 5 million software developers, India is well positioned for sustained growth in the AI landscape. The report highlights the effective integration of AI into critical sectors such as healthcare and agriculture, showcasing its transformative impact. While global human development progress faces an unprecedented slowdown, the report emphasizes that AI holds the promise to reignite and accelerate development efforts worldwide. How important would be AI in India's growth story, Mr. Singh, as it integrates into various sectors now on?
See, as far as artificial intelligence, I think our government is taking it very seriously. And if you look at the world AI index, we are already at number 40, and we intend to be number 5 by 2047. So I think, and we AI is something which is now part of our every aspect of our life. So I think the Ministry of Information Technology has taken it very strong note of this, and a lot of initiatives have been taken, and we are moving very fast in this. And being a very IT giant, yeah,
absolutely,
so highly intensive into IT, we are highly extensive and intensive into as far as technology companies. So I think AI is something where we would be leaders in some years to come.
जी, एक और खबर है जो आज देश में डिजिटल लेन देन की धड़कन बनी हुई है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई क्यूआर कोड ने वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान अवसंरचना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। ये उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 91.5% की बढ़त के साथ 65,79,00,000 लेन देन तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड्स में तेज बढ़ोतरी के उलट क्रेडिट कार्ड्स के लेन देन की वृद्धि दर में गिरावट आई है और ये 7.94% पर आ गई। डेबिट कार्ड की संख्या में सिर्फ 2.7% की वृद्धि हुई और इसका कुल आंकड़ा 99.10 करोड़ तक रहा। मार्च महीने में यूपीआई लेन देन में रिकॉर्ड 24,77,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है।
And talking about oil, oil prices gained today, rebounding on technical factors and bargain hunting after a decision by OPEC Plus to boost output sent prices down, although concerns about market surplus persisted. Brent crude was trading over 2.1%, up at $61.50 per barrel. WTI crude was also up by 2.1% at $58.36 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 2.07% बढ़कर 97,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 2.2% गिरकर 96,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 2.2% बढ़कर 96,749 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सिद्धार्थ जी मार्केट मंत्र में आने और खबरों पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end two-day winning streak. Sensex slips 156 points. Nifty closes before 24,400. India to become world's fourth largest economy in 2025, says IMF. And global crude oil prices rebound. Brent crude trades at $61.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.